Market Mantra. Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
नमस्कार मार्केट मंत्र के ताजांक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा. डॉक्टर शर्मा कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
जी शुक्रिया.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग.
थैंक यू मनोज. यस द हेडलाइंस फर्स्ट. की डोमेस्टिक स्टॉक्स एंड मोर देन हाफ अ परसेंट. सेंसेक्स क्लोजेज अबव द 65,600 मार्क. निफ्टी सेटल्स नियर द 19,550 लेवल. Gold trades at around 56,730 rupees per 10 grams for October contracts at MCX. And Brent crude oil prices decline around 1.5%.
देश के घरेलू शेयर बाजार में लिवाली से प्रमुख सूचकांक आधा प्रतिशत से अधिक ऊपर उठकर हुए बंद. सेंसेक्स 65,600 के स्तर से ऊपर पहुंचा. निफ्टी 19,500 के नजदीक हुआ बंद. मल्टी कम्योडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 56,730 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत लगभग 1.5% फिसली. घरेलू शेयर बाजार में आज निवेशकर्ताओं की जबरदस्त भागीदारी से लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक आधी फीसदी से अधिक ऊपर उठकर बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 65,600 के स्तर को पार कर गया जबकि निफ्टी भी 19,550 के नजदीक बंद हुआ. दोनों प्रमुख सूचकांकों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले जुले रुख के बीच तेजी देखने को मिली. सेंसेक्स कारोबार के अंत में आज 406 अंक बढ़कर 65,632 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक बढ़कर 19,546 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां छोटी और मझौली कंपनियों के रुख में थोड़ा सा अलग अलग यानी जोर देखा गया. एक ओर जहां थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखी मिड कैप इंडेक्स 0.03% घाटे में दिखा. वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.59% की वृद्धि देखने को मिली.
The key domestic share indices today ended more than half a percent. The BSE Sensex closed above the 65,600 mark, while the NSE Nifty ended near 19,550 points. Both indices rose amid mixed global cues. The Sensex finished 406 points up at 65,632, while the Nifty settled 110 points up at 19,546. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined 0.03%. However, the small-cap index rose 0.59%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 23 companies appreciated, while 7 companies declined. Larsen & Toubro climbed 2.4%. Titan and TCS both gained 1.5% each. On the other hand, Power Grid plunged 1.3%, NTPC and Nestle India both declined 0.5% each. In sectoral indices at the BSE, 14 sectors logged gains while 6 fell. Capital goods gained 1.3%, services and IT both sectors rose 0.5%. On the other side, realty sector declined 0.6%, while utilities index fell 0.5% and healthcare sector slipped 0.3%. The overall market breadth was positive as shares of 2,278 companies gained, while those of 1,384 companies declined. A total of 123 shares remained unchanged. So, Dr. Sharma, if markets reflect the health of the economy, markets have been, Sensex has been hovering around 65, little plus and minus over the last few weeks. Can we say that we are now stable?
Yes, we are stable and we are resilient also, because we observed that markets at highs were sideways. Markets were not going up and not going down.
Mm-hmm.
But the problem of liquidity, then thereafter markets took a great correction, and there was a correction of 300, 400 points in Nifty. So overall, now, because today was an expiring day of the option segment, so that's why markets were volatile actually.
Mm-hmm.
So going forward, I think markets will remain resilient, and there is no big correction is expected in the market. Markets will remain resilient, and upside movement, the signs of upside movement are there, because now the global conditions are settling, and inflation is also cooling down. Many economies are facing that inflation is decelerating month after month, but still the risks are at the downside, and warranting that if inflation trajectories are addressed, then there may be a great movement in the markets in the coming times.
नजर डालते हैं पहले रुपए की स्थिति पर, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे घरेलू शेयर बाजार पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 83.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 106.7 पर कारोबार कर रहा था. डॉक्टर शर्मा, पिछले कुछ सत्रों में हमने बाजार में नरमी देखी, इसे मुनाफा वसूली कहें, करेक्शन कहें, या बिकवाली का दौर कहें, वो कुछ सत्र तक चला. आज फिर लिवाली की गई है, जबकि आज जैसा कि आपने कहा कि जो एफएंडओ होता है उसका निपटान का दिन आज गुरुवार हुआ करता है, उसमें भी बाजार रेजिलियंट रहा है. तो इस रेजिलियंस के पीछे क्या वजह आपको लगते हैं, क्या कारण लगते हैं?
देखिए, उसके पीछे कारण बहुत ही स्वाभाविक है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही रेजिलिएंट अर्थव्यवस्था है. दैट्स व्हाई मार्केट्स आर आल्सो रेजिलिएंट. मार्केट्स भी उसी तरीके से बिहेव करती हैं. लेकिन ग्लोबल हेडविंड्स, जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो इश्यूज थे, जो आज से दो तीन महीने पहले के इश्यूज थे, जो ज्यादातर जो बैंकिंग प्रॉब्लम हुई पहले यूएस में, उसके बाद जो स्विस बैंक का जो ऐसे इश्यूज थे, वो सभी एक तरीके से सेटल हो गए. और जो यूएस का जो डेट सीलिंग का इश्यू था वो भी सेटल हो गया था. उसके बाद अभी जो रिस्क है ग्लोबल इकोनॉमी को, रिस्क ज्यादातर मेजर जो फैक्टर है वो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन ट्राजेक्ट्री को हम कहां तक कंट्रोल कर पाएंगे. अगर इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर पाते हैं तो अपने पास कोई ज्यादा मेजर रिस्क जो है वो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट से है. तो उसके अलावा फिर हमारे पास मार्केट्स के लिए काफी अच्छा स्कोप है. लेकिन अगर इन्फ्लेशन एस्केलेशन दोबारा से आती है, अगर कुछ ऐसे सप्लाई डिसरप्शंस होते हैं बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, रशिया यूक्रेन कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंट्रीज, तो उसका फिर खराब असर सीधे तौर पे इन्फ्लेशन के ऊपर पड़ेगा. तो फिर ज्यादातर जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके लिए एक यही चैलेंज होगा कि वो अपने पॉलिसी रेट्स को आगे बढ़ा दे रहे हैं. लेकिन उसके बहुत ही रिपरकशंस फिर खराब हो सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स अभी हमने सेटल की हैं वो वापस दोबारा से सामने आ सकती हैं इन्फ्लेशन के वापस आते ही. तो हमारे लिए जो बिगेस्ट इस टाइम पे जो चैलेंज है, जो कल्प्रिट है, वो है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को हम किस तरीके से सेटल कर पाएंगे, उससे हमारी 10 और समस्याएं सेटल हो जाएंगी अगर हम इन्फ्लेशन को एड्रेस कर पाते हैं. लेकिन इंडिया ने बहुत हद तक हमारी, अब आपका जो प्रश्न था मनोज जी के हमारी मार्केट्स रेजिलियंट है, उसके पीछे मैं ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है अभी एक ग्लोबल चैलेंज है, लेकिन हम उसको काफी हद तक एड्रेस कर पाए. हमने उसको डब्ल्यूपीआई में तो अभी भी नेगेटिव में है, तो डब्ल्यूपीआई एक इंडिकेशन देता है कि आने वाले टाइम में जो रिटेल प्राइसेस हैं वो भी बहुत अच्छे से सुधरेंगे, वो अपने वापस रेशनल ट्रैजेक्टरी में आएंगे. अगर पीछे दो तीन महीने की बात करें, जो एस्केलेशन हमने देखी बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, जो टमाटर जिसमें एक मेन ड्राइव किया जो पूरे ग्रोथ को, तो वो भी फैक्टर जो है वो अब नलीफाई हो गया है. उस अगर आप देखेंगे तो वेजिटेबल प्राइसेस जो है काफी 50% से ज्यादा टूट चुके हैं. तो जो इन्फ्लेशन के एस्केलेशन की संभावना हमारे लिए कोई रिस्क ऐसे नहीं है आने वाले टाइम में। इन्फ्लेशन जो है वो हमारा इन्फ्लेशन खास करके भारत में इन्फ्लेशन जो है आगे जाके रेशनल हो जाएगा। मैं समझता हूं कि अगले 2-3 महीनों में इन्फ्लेशन जो है हमारा 4 और 4.5% के बीच में आ जाना चाहिए।
विच इज जस्ट आइडियल।
जी जी।
एंड यूएस एंड यूके हैव ऑल्सो नाउ स्टेबलाइज्ड इन इन्फ्लेशन बिकॉज यूएस हैज सीन बोथ बोथ द प्लेसेस हैव सीन अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। यू थिंक दे हैव नाउ रीच्ड द प्लेटो
बिकॉज इन्फ्लेशन वॉज मल्टी डेकेड हाई इन यूएस एंड सिग्निफिकेंटली हायर देन देयर टॉलरेंस लेवल। दो द इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी इज डिसेलरेटिंग बट स्टिल इट इज far above the tolerance level. So that's why those economies are worried that how to control inflation and bring it to the level of their tolerance levels. So that's why they continue their increase in the policy rates and that's why the markets and the financial markets are impacted after some time. Yeah.
लौटते हैं घरेलू शेयर बाजार पर डॉक्टर शर्मा और समझना चाहेंगे कि मॉनसून अब अपने अंतिम चरण में है या कह लें कि अब बारिश लगभग खत्म होने वाले हैं। उसका प्रभाव जो कुछ बारिश होनी थी वो हो गई। अब यहां से जो मॉनसून का स्प्रेड हुआ है वह कुल मिलाकर कैसा शेयर बाजार पर और कुल मिलाकर इकोनॉमी पर असर डालता लग रहा आपको?
ठीक है, हमने एल नीनो इफेक्ट के बजाय के बावजूद भी हमने एक नॉर्मल मॉनसून जो है हासिल किया है जो एक बहुत बड़ी चीज है। जो हम हर एक साल अपना जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं तो इस साल भी संभावना है कि हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे और जिससे कि हमारी जो फूड सप्लाईज हैं वो इंटैक्ट रहती है, हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी अगर आपने देखा होगा कि हम $30 बिलियन से $40 बिलियन फिर $50 बिलियन $53 बिलियन तो हमने काफी अच्छी मारियत हासिल की है और जिससे कि हमारी सप्लाई चेन भी काफी हद तक उनमें सुधार आता है और हमारे जो इन्फ्लेशन रिलेटेड इश्यूज हैं जो खासकर जो फूड इन्फ्लेशन एक हमारे लिए चैलेंज बनता है उसमें नरमी आती है। लेकिन अभी जब जो हमने देखा कि जो मॉनसून्स थे बहुत ही इरेटिक और अब्रप्ट थे और काफी जगह पे बहुत ही हाहाकार मचते हुए हमने देखा जिससे कि सप्लाईज डिस्टर्ब हुए। एक उल्टा जो एक काउंटर प्रोडक्टिव जो हम इफेक्ट कहते हैं कि एक तो मानसून की वजह से फसल बाड़ी अच्छी होती है तो प्राइसेस कंट्रोल होते हैं, फूड प्रोडक्शन ज्यादा होती है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि ज्यादा मानसून होने की वजह से जो सप्लाई डिसरप्शन भी हो जाते हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड, जो हमने अभी ऑब्जर्व किया जिसकी वजह से इन्फ्लेशन एस्केलेशन भी है, सब्जी भाजी के दाम काफी इंक्रीज हुए। तो अभी हमने एक नॉर्मल मानसून जो था वो ऑब्जर्व किया है और मॉनसून सेशन लगभग खत्म हो चुका है। तो आने वाले टाइम में अभी जो जिस तरीके से हमारी जो उत्पादकता है जो अभी हम प्रोडक्शन देखेंगे जो खरीफ क्रॉप्स अभी आएंगी अक्टूबर में तो उनसे बड़ा अच्छा प्रभाव इकोनॉमी के ऊपर आएगा। किसानों के पास जब उनके जो प्रोडक्शन है उसके लिए फसल
घर आएगी
उसके बाद डिमांड जो है काफी एकदम काफी प्रफुल्लित होती है तो त्योहारों का सीजन भी होता है। तो जो मूवमेंट है जो एक मूड है वो काफी पॉजिटिव रहेगा आने वाले टाइम में इन महीनों में अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्योंकि एक फेस्टिव सीजन भी होता है और दूसरा हमारा जो प्रोडक्शन है उसकी बहुत अच्छी आने की संभावना है।
Dr. Sharma, we talk of India being the fastest growing economy, fifth largest economy in the world. Large caps have always been a favorite as far as long-term investment is concerned and a kind of a safe bet. Do you see that now the typical middle class is investing more in mid-cap and small-cap and thereby showing greater confidence in the stocks?
Yes, because our MSMEs, our mid-sized companies are gaining more pace in the stock market because now an era has started which is for the small and medium-sized companies. And these companies are more and more integrated with the world economy. They are trying to increase their market share in the global economy and they are adopting the new technologies like the artificial intelligence and the industry 4.0. So all these developments are taking place in the small and medium-sized companies because they want to grow significantly and fastly so that they are able to compete in the international market because the large conglomerates are always very, very competitive in the global markets, but they are very few in India. We have a great chunk of MSMEs. These are more than 90% in our total companies. But the production level is not that much high. Their contribution in GDP is not that much high. So that's why the government has provided so many reforms during the last 9-10 years. And during the last 2-3 years, during the Corona period and after the Corona period, government was very, very proactive to provide a great handholding to the MSME sector.
Yeah.
So now those reforms are becoming visible at the ground level for the growth of MSMEs. Yeah. That's why the growth as compared with the large conglomerates will be more in the medium and small and medium sized enterprise. That's why these stocks are looking very, very lucrative for the new investors, and their prices sometimes as compared with the large conglomerates are rational. Like stocks are in the range of 200, 300, 400. Sometimes the large caps are rated more than 1,000, 2,000 and 3,000. That's why the small investors invest. They buy the 200, 300 shares in the same amount that they invest in the large companies.
Right, so it's a kind of a...
Yes, this is the psychological thing also, that they have such kind of number of shares in their DMAT with the small investments.
Mm-hmm. Also, it kind of proves that the government is going through all-inclusive growth.
Yes, because the retail participation is increasing. That's why the majorly the retailers are investing in the small and medium-sized companies.
Dr. Sharma, share bazaar, gharelu share bazaar par apni charcha ko viram dene se pehle, hum apne shrotaon ke nazariye se, jo kehle hamare aam niveshak hain, chote niveshak hain, unhein kya salah dena chahenge, bazaar mein jo abhi ka star hai, 65,000 plus ka jo level hai, yahan se bazaar aapko आने वाले 6 महीने साल भर में ऊपर उठता नजर आ रहा या फिर इसमें हम गिरावट का दौर देखेंगे घरेलू शेयर बाजार में, दोनों को देखते हुए क्या सलाह देना चाहेंगे निवेशकों की, किस रूप में अपना व्यवहार रखें?
देखिए, जो इन्वेस्टर्स का व्यवहार है बहुत ही रेशनल होना चाहिए. मार्केट्स में कोई भी अग्रेसिव मूव नहीं होनी चाहिए कि मैं मार्केट्स का तो बहुत अच्छा आगे संदर्भ है, बहुत अच्छी आउटलुक है, हम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो मार्केट्स में एक हैवीली इन्वेस्ट. बहुत ही कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए हमेशा मार्केट्स, क्योंकि मार्केट्स को कोई भी आगे प्रोजेक्ट नहीं कर पाता है. मार्केट्स के ऊपर व्यू है जो उसी के ऊपर हम देखते हैं कि मार्केट्स को आगे
भविष्यवाणी
करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कल कुछ भी कोई भी चीज हो सकता है. मार्केट्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स. तो इसलिए, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्राजेक्टरी अगर आप देखेंगे, मैं बताना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म में मार्केट्स बहुत ही प्रफुल्लित रिजल्ट देती है. अब आपको मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि 1 जनवरी 1991 में हमारा जो सेंसेक्स था 999 था, 999, और आज हमारा जो सेंसेक्स है 65,000 से ऊपर है और ये 68,000 को टच कर चुका है उसके भी ऊपर. तो आप देखिए ग्रोथ, पिछले जो लगभग कोई 32-33 साल में ग्रोथ हुई है, कई हजार परसेंटेज पॉइंट से इंक्रीज हुआ है.
इनफैक्ट इट वाज हॉवरिंग अराउंड 50, यू हैड प्रेडिक्टेड वन
एंड
माइट टच 65, आई रिमेंबर.
यस यस. सो एंड ड्यूरिंग द अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे हमने डाउनफॉल्स भी देखे, बहुत सारे हमने करेक्शंस भी देखे. हमने लेमन क्राइसिस भी देखा जब मार्केट्स में 30-40% करेक्शंस आए. हमने कोरोना वायरस भी देखा जब मार्केट्स में 40-50% करेक्शंस आए. बट वी रिकवर्ड सिग्निफिकेंटली इन द वेरी 6 मंथ्स ऑफ द एवरी क्राइसिस ईयर. अगर हम लेमन में देखें तो उसके हम 6 महीने के बाद ही न्यू हाई पे चले गए. अगर हम कोरोना वायरस देखें तो उसके 6 महीने के बाद ही हम वापस जो स्तर पहले का था उसके भी ऊपर चले गए. तो मार्केट्स में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है. लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि अगले वाले 6 महीने में और 1 साल में हम बहुत अच्छे रिटर्न ले जाएंगे, क्योंकि मार्केट्स का जो ग्रोथ है लॉन्ग टर्म है. शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट्स में कुछ भी हो सकता है. तो इसलिए कॉशियस अप्रोच, जब भी आपको लगे कि मार्केट में अभी एक अपॉर्चुनिटी आई है, अभी मार्केट्स में कुछ करेक्शन है, तो उस टाइम पे खरीदारी करनी चाहिए. उस टाइम पे वो भी स्टेप्स में, यानी कि हम अपना पूरा पोर्टफोलियो उसी दिन बिल्ड कर पाएं जब मार्केट्स ने 400 पॉइंट्स की करेक्शन ली है, उसको भी स्टेप्स में इन्वेस्ट करिए. अपना एक साइकोलॉजिकल लेवल्स रखिए कि मैं इस लेवल पे इतना इन्वेस्ट करना चाहता हूं जिससे कि मेरे को इतने रिटर्न्स आएंगे. ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो मैं निफ्टी में देख रहा था कि ऑन एन एवरेज अगर हम पीछे 20 साल का आंकड़ा देखते हैं तो ऑन एन एवरेज जो है 10% से ऊपर के ज्यादा का जो है एनुअल रिटर्न हमारी मार्केट्स देती है
कुल मिलाकर.
तो लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर जो लोग हैं, रिटेलर्स हैं, जो कई बार मार्केट्स में पैनिक की वजह से अपना स्टॉक बेच देते हैं या फिर मार्केट्स बहुत ऊपर जा रही हैं तो वो एंटर कर जाते हैं कि भाई मार्केट्स में बहुत पोटेंशियल मिलेगा, तो थोड़ा उल्टा चलता है। मार्केट्स में बाइंग टाइम होता है जब मार्केट्स में करेक्शंस मोड में होती है, और सेलिंग टाइम होता है जब मार्केट्स न्यू हाईस बना रहे होते हैं, तब प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए।
बहुत बड़ी स्पष्ट सी सलाह है कि हड़बड़ाकर यानी घबराकर आप कोई फैसला न लिया करें, धीमी गति से चलें और अपने लक्ष्य के अनुरूप जहां आपको लगे कि अब बाजार ऊंचाई पर है और आपने जहां खरीदा उससे काफी आकर्षक मूल्य पर आपको लाभ मिल रहा है तो पैसा निकालते चलें और फिर जब डिप आए तो निवेश करते चलें। यही है लगातार लाभ पाने का आसान सा सूत्र। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां दक्षिण कोरिया को छोड़कर अन्य प्रमुख बाजारों में लिवाली तेज रही। निवेशकों की लिवाली से जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.8% लाभ में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.2% की वृद्धि हुई। उधर हांगकांग का हैंग सेंग 0.1% ऊपर आ गया, लेकिन बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1% घाटे के साथ बंद हुआ। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स आज सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद रहा। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां लिवाली दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में फ्रांस का कैक 40 और जर्मनी का डैक्स दोनों 0.1% ऊपर चल रहे थे। लंदन का फुटसी 100 0.4% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था।
Look at the U.S. markets. Well, Dow Jones Industrial Average broke a three-day losing streak yesterday as Treasury yields pulled back from multi-year highs following the release of much weaker-than-expected jobs data. The Nasdaq Composite Index increased by 1.4%, the S&P 500 added 0.8%, and the Dow Jones Industrial Average gained 0.4%.
यहां पर एक संक्षिप्त सा सवाल यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर। यूरोपीय अर्थव्यवस्था अभी कहां दिख रही अपन अपने अंतर विरोधों से, और कहले वहां जो दो खेमे में बटा हुआ पूरा वहां का समाज दिख रहा था, पूरा वैश्विक जगत उसके प्रभाव में आता दिख रहा था, उसमें कितना परिवर्तन आया है और किस रूप में वहां की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं या कह लें कि वहां ह्रास दिख रहा है अभी भी?
देखिए, यूरोप में अभी स्लो डाउन है। अगर हम देखें कि यूएस के कंपैरिजन में यूरोप में ज्यादा स्लो डाउन है, क्योंकि अगर हम ग्रोथ पैरामीटर ही देखें तो यूरोप 1% से भी नीचे ग्रो करेगा इस साल में, 0.9% पे ग्रोथ है। उसका कारण है कि एक तो जो पेंट अप डिमांड थी और जो टूरिज्म सर्विसेज थी, खासकर जो कोरोना के एकदम बाद एकदम से टूरिज्म इंक्रीज हुआ, उसमें अभी विराम आता हुआ दिखाई देता है। जो उनकी सर्विसेज की ग्रोथ है वो धीमी पड़ गई है, और मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी थोड़ा स्लंप है। खास करके जर्मनी का अगर हम देखें, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो उतने ग्रो नहीं कर रहा है, उसमें स्लंप है। तो दूसरी इकोनॉमीज फ्रांस और इटली और ये सब इकोनॉमीज जो है एक लैकलस्टर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में है, जिसमें अभी समय लगेगा। जो इस साल और खास करके जो डिमांड में स्लो डाउन आई है इन इकोनॉमीज में, जिस वजह से हमारे भी एक्सपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा प्रभाव हमने देखा। लेकिन हमारी जो डिमांड है वो इंटैक्ट है। हमारी जो अगर हम आईएमएफ का डेटा देखेंगे तो जो ट्रेड ग्रोथ है, एक्सपोर्ट्स ग्रोथ है खास करके, जो वो एडवांस्ड इकोनॉमीज के साल में ज्यादा है। मीन्स के वो हमें ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं होगा जो डेवलपिंग एंड इमर्जिंग ओवरऑल। तो उसी वजह से जो है डिमांड में स्लो डाउन उधर काफी हमें देखने मिले। जो उनकी एक्सटर्नल इकोनॉमी है, खास करके जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो अभी भी इंटैक्ट हैं, वो उससे ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो है एक स्लो डाउन का वातावरण है एडवांस्ड इकोनॉमीज में खास करके। लेकिन अगर हम इधर के खिते को देखें, जो हमारा इमर्जिंग एंड डेवलपिंग एशिया है, तो इसमें काफी कंपैरेटिवली बहुत ही सिग्निफिकेंट अंतर है, हम काफी हाई लेवल पे ग्रो कर रहे हैं।
दैट्स मेबी बिकॉज वी आर एसेंशियली अ कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी एंड इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन, समटाइम्स इट्स एन एसेट
बिकॉज डिमांड इज मोर स्ट्रांग एज कम्पेयर्ड विद द एडवांस्ड इकोनॉमीज।
राइट। Well, moving on, Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles, Shri Piyush Goyal said that PM Gati Shakti will become the planning tool for the entire world. Further, the minister acknowledged the importance of GSV that offers skill development and capacity building of logistics professionals for formalization in the logistics sector. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT, Ministry of Commerce and Industry and Gati Shakti Vishwavidyalaya, GSV, entered into collaboration today to advance India's infrastructure and logistics sectors. Under this memorandum of understanding, GSV will be the nodal agency across India to design, develop and deliver courses and curriculum related to PM Gati Shakti National Master Plan and National Logistics Policy at various centers in different states. More than 16 central ministries, including Niti Aayog, came together for the signing of MOU, culminating the three visions such as smarter planning and implementation, structured specialized development and capacity building.
बहुत संक्षेप में मंत्री महोदय कह रहे हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला साबित हो सकता है हमारा यह नया अभियान गतिशक्ति योजना. किन अर्थों में और किस तरह होगा ये बहुत संक्षेप में?
देखिए, जो हमारा मॉडल है, खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मॉडल है, जिसमें हमने गतिशक्ति के थ्रू बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को आपस में कनेक्ट किया है, वो एक मॉडल जो हमारी ग्रोथ एक स्ट्रेटजी है
जी,
उसके जरिए हम काफी अच्छे से अपनी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको इंक्रीज कर पाए. इस साल ही हम 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जो बजट में अनाउंस किया गया. तो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है वो बहुत ही इंटैक्ट है और काफी विश्व में लुक्रेटिव हो गई है. तो बहुत सारे हम एक विश्व को एक मॉडल दे रहे हैं कि आप भी इस तरीके से इस कनेक्ट करके जो गतिशक्ति को एक ग्लोबल शक्ति के रूप में हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं.
राइट. The outstanding balance of 4.48% government stock 2023 is repayable at par on November the 2nd, 2023. No interest will accrue thereon from the said date. In the event of a holiday being declared on repayment day by any state government under the Negotiable Instruments Act 1881, the loans will be repaid by the paying officers in that state on the previous working day. As per sub-regulations 24.2 and 24.3 of the Government Security Regulations 2007, payment of maturity proceeds to the registered holder of government security held in the form of subsidiary general ledger or constituent subsidiary general ledger account or stock certificate shall be made by a pay order incorporating the relevant particulars of his bank account or by credit to the account of the holder in any bank having facility of receipt of funds through electronic means. For the purpose of making payment in respect of the securities, the original subscriber or the subsequent holders of such government securities shall submit the relevant particulars of the bank account well in advance.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. सरकार ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में सामान्य भविष्य निधि ब्याज दर 7.1% पर बनी रहेगी. सरकार ने लगातार 15वें महीने अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की बचत पर आधारित भविष्य निधि ब्याज दर को इसी स्तर पर बनाए रखने की घोषणा की है. वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एतद संबंधी अधिसूचना जारी की. यह दर रेलवे और सशस्त्र बल सहित सरकारी कर्मचारी की अन्य भविष्य निधि योजनाओं के लिए भी लागू होगी. इससे पहले वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में इस दर को 7.9% से घटाकर 7.1% किया गया था. तब से लेकर अब तक लगातार यह दर चलन में, जबकि इस बीच कुछ चुनी हुई छोटी बचत योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है.
And now let's take a look at oil prices. Well, Brent crude prices fell near 1.5% today, extending the previous session's sharp losses as an uncertain demand outlook overshadowed any boost from an OPEC Plus panel maintaining oil output cuts to keep supply tight. In intraday trade, Brent crude was trading at $84.60 per barrel. West Texas intermediate crude price was at $82.90 per barrel when reports last came in.
आइए अब चलें सर्राफा बाजार पर. मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज में अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक आज अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 10 रूपये बढ़त के साथ 56,730 रूपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 315 रूपये उछलकर 62,200 रूपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी. वैश्विक बाजार पर ध्यान दें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मजबूत होकर $1,808.35 प्रति औंस पर थी. चांदी भी $21.25 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी. और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
जी शुक्रिया. थैंक यू.
एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, हियर्स अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस अगेन. की डोमेस्टिक स्टॉक्स एंड मोर देन हाफ अ परसेंट. सेंसेक्स क्लोजेस अबव द 65,600 मार्क. निफ्टी सेटल्स नियर 19,550 लेवल. Gold trades at around 56,730 rupees per 10 grams for October contracts at NCX. And Brent crude oil prices decline around 1.5%. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, with my co-anchor Manoj Pathak signing off. Namaskar.